प्रातः क्लास चल रहा था, तीन ग्यारह 1966 गुरुवार को छठे पेज पर बात चल रही थी।
ये त्रिमूर्ति का
चित्र है, एकदम फर्स्ट क्लास। इसमें एक तरफ है नरक और एक तरफ में है स्वर्ग। नरक की ओर बाईं ओर है नरक और दाईं ओर है स्वर्ग। दाया हाथ शुभ सूचक और बाया हाथ अशुभ सूचक। जिस तरफ है नरक, नर अर्थात मनुष्य, और नरक नर माने मनुष्य का माने करने वाला, अर्थात जो मनुष्य विकारी होते हैं वो क्या करते हैं, नरक बनाते हैं। और जो दाईं ओर स्वर्ग है वहां स्वस्थिति में रहने वाले देवताएं, स्व माने आत्मा, आत्म की स्थिति में रहने वाले देवताएं स्वर्ग बनाते हैं, जन्नत बनाते हैं। अंग्रेज लोग जिसे कहते हैं पैराडाइज। और नरक और स्वर्ग, नरक के अंत और स्वर्ग के आदि में ये होती है स्थापना। इस नरक का विनाश होना है। और ये दिन स्वर्ग होता है। और वो बाईं ओर है रात। रात में सब मनुष्यों की बुद्धि धक्के खाती रहती है, भागती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है, मना भक्ति करती रहती है। तो ये हुई रात, जहां दर दर ठोकरें खाते हैं और ये है स्वर्ग, ब्रह्मा का दिन। और वो नरक है ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन अर्थात ब्रह्मा भी क्या करता है, मनुष्य है, देवता है या भगवान है, क्या है? दाढ़ी मूंछ वाला तो है, मनुष्य है, जिस ब्रह्मा के द्वारा ये सारी सृष्टि रची गई। ब्रह्मा नरक में है तो सारी ब्रह्मा की रचना नरक में। और जब ब्रह्मा स्वर्ग में है दाईं ओर, सृष्टि का पहला पत्ता बनकर कृष्ण बनकर आता है, 16 कला संपूर्ण सृष्टि में आता है तो दिन है। कोई धक्का आदि भक्ति आदि भागने की दरकार ही नहीं। और फिर बाद में है ये ब्रह्मा की रात। देखो ये बात समझाने में कितना सहज है। इस सृष्टि सुख और दुख का खेल है, स्वर्ग है सुख और नरक है दुख। इतना सहज समझने समझाने का है, फिर पता नहीं क्यों नहीं मनुष्य समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि मैं ये जो समझाने समझाने और समझने का टाइम आता है, ये नरक के अंत में आता है, मध्य में आता है या आदि में आता है? अंत में आता है, 63 जन्मों के अंत में। तो आदत पड़ी हुई है धक्के खाने की, भक्ति करने की आदत पड़ी हुई है, अभ्यासी हो गए हैं। नरक में गोते खाने के आदि हो गए हैं। इसलिए इन विकारी मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं है, समझते ही नहीं है। जैसे नाली के कीड़े हो गए हैं, मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ पड़ी रहती है? कहाँ पड़ी रहने की आदि हो गई? नाली में पड़े रहने की आदत हो गई। जैसे कीड़ा नाली में रहता है, नाली से जन्म लेता है, नाली में पलता है और नाली में मर जाता है। अगर उस कीड़े को साफ सुथरे स्थान में ला करके रख दो अचानक, तो बिलबिलाएगा या आराम से बैठेगा? तो ये मनुष्य समझते नहीं है। अगर समझते भी हैं बच्चे, और फिर देखो यहाँ समझ करके आते भी हैं, फिर देखो अस्थायी रूप से ठहर करके होशियार हो करके भी, औरों को समझाने के लिए होशियार हो करके भी उनके सामने बाबा कितना चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई ब्राह्मणियों, तुम बैठ करके इतने सेंटर से संभालती हो, अच्छा तुम ही आप सामान बनाए करके कोई गद्दी का मालिक तो बनाओ। हमको भी एक दो सेंटर से निकाल करके दो। भले उन सेंटरों से निकले हुए भी हैं, परंतु जल्दी जल्दी तो दो। बाप तो कहेंगे ना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, विनाश सामने खड़ा है। कौन से सन की मुरली है? छाछटी की। सामने कहाँ खड़ा है? 1966 के बाद अब तक कितने साल हो गए? सामने खड़ा है क्या? बिना सामने नहीं खड़ा, बाबा ने झूठ बोला। सामने कैसे खड़ा है? बोला कि संक्षेत्र से ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा का दिन शुरू होता है? ब्रह्मा तो 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया, कहते हैं ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला 100 साल में खत्म हो जाता है, तो फिर वो आत्मा कहाँ जन्म लेती है? बोला 1966 में ही बाबा ने विनाश की घोषणा के बारे में बोल दिया था। क्या बोला था? 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो क्या हुई? और भी बोला टूलेट का बिना बोर्ड लग जाएगा। कब? 76 में। तो क्या टूलेट का बोर्ड लग गया है? नहीं लगा? कैसे है? बोला तुम बच्चों का लक्ष्य है जीवन का नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। तो टू लेट का मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा या लक्ष्मी नारायण पहले जन्म लेंगे और जन्म भी हद का लेंगे या बेहद का जन्म लेंगे बुद्ध रूपी हथेली में? पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बड़े बड़े बोर्ड टांगे जाते थे, श्री कृष्ण का चित्र दिखाते थे, दिखाते थे हाथ में तीरी पर बहिष्ट लेकर के आया है, स्वर्ग लेकर के आया है और लात मार रहा है नरक को। तो देखो 76 के बाद वो चित्र लोप हो गया। कहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि इस बात को समझा ही नहीं। किसने नहीं समझा? और ब्रह्मा ने समझा है? ब्रह्मा ने भी नहीं समझा तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी नहीं समझा। नहीं समझा 76 तक तो रात हुई या दिन हुआ? क्या कहेंगे 76 के बाद भी ब्रह्मा का दिन या रात? तब भी रात चल रही है। और बाबा ने बोला 76 में विनाश होगा लक्ष्मी नारायण का, दिव्य जन्म रूपी प्रत्यक्षता होगी। जैसे बच्चा बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, तो जन्म ही तो कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई न कोई आत्मा है जिनके मन बुद्धि रूपी पेट से उन आत्माओं का प्रत्यक्ष रूपी जन्म हो जाता है। कौन आत्मा है? दिखाते हैं, कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव उसका बाप काली नदी से पार लेकर के गया टोकरी में डाल करके। तो कौन सी टोकरी की बात है? बुद्धि रूपी टोकरी में वसुदेव ने उस बच्चे को छुपा रखा था। व्यक्त था या व्यक्त था? व्यक्त माने जिसे आंखों से देखा जा सके, और अव्यक्त माने जिसे आंखों से देखा न जा सके, बुद्धि से समझा जा सके। माना वो ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और राम के बुद्धि रूपी पेट में विराजमान हो जाती है। जैसे कृष्ण की आत्मा संगम में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम की आत्मा त्रिमूर्ति में शंकर का पार्ट बजाती है। तो शंकर के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा। वो ही बात भागवत में दिखाई दी है कि कृष्ण का बाप कृष्ण बच्चे को बुद्धि रूपी टोकरी में रख करके काली नदी से पार ले जाता था। अब बताओ कौन से ब्रह्मा की बात है कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है, दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य, और नई दुनिया में जन्म लेता है। तो नई दुनिया में जन्म लेता है तो ब्रह्मा की रात हुई या दिन हुआ? दिन हुआ। तो कौन सी ब्रह्मा की बात है? हैं? हाँ, जिस ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में गायन है, पंचमुखी ब्रह्मा, एक मुख काट दिया गया तो मुख अलग कर दिया जाए और धड़ अलग कर दिया जाए देह, तो देह बांध अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? देह से आत्मा डिटैच हो जाए, तो जो आत्मा देह से जल्दी डिटैच हो जाती है वो पांचवा मुख हुआ। और ये भी गायन है कि जो ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। तो जो सिर ब्रह्मा का डिटैच हो गया देह भान से, वो अव्वल नंबर में गया ना, वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा 4 भुजाधारी विष्णु के सर में है, जो भुजाओं को चलाने वाला है। यह भुजाएं अपने आप चलती हैं, तो 4 भुजाएं अलग मददगार भुजाओं को कहा जाता है, और उनको चलाने वाली आत्मा अलग, कौन? राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बाबा पूछते भी हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई ब्राह्मण बच्चे नहीं बता पाते। तुम बच्चे तो जानते हो कि ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। बाबा कब कहा जाएगा? जब आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल कोई तन में प्रवेश करे। तो क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में पहले प्रवेश किया? नहीं, उनमें तो साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार का मतलब ये थोड़े ही है कि प्रवेश हो गया। साक्षात्कार तो सूरदास को भी हुए, तुलसीदास को भी हुए, रैदास को हुए, मीरा को हुए। तो क्या मीरा और ये भक्त स्वर्ग में पहुंच गए, आत्मिक स्थिति में पहुंच गए? नहीं। तो साक्षात्कार करना कोई प्रवेशता की निशानी नहीं है। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन्होंने समझा कुछ है? नहीं समझा तो गुरुओं के पास इधर उधर वाराणसी में भटकते रहे। आखरीन भटक भटक कर जब थक गए तो अपने जीवन के अनुभव में उन्होंने जाना कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा और साफ व्यक्ति है, होशियार है, तो हमारा बहनोई है जिसकी छोटी सी हीरे की दुकान। और ब्रह्मा बाबा की तो कलकत्ते में भव्य दुकान थी। छोटे से हीरे की दुकान वाला गरीब हीरे के व्यापारी होगा या साहूकार होगा? गरीब था। तो बाबा ने रहम करके उनको अपनी दुकान में मैनेजर बना लिया, भागीदार बना लिया। धन हमारा और मेहनत तुम्हारी। जो फायदा होगा उसमें आधा आधा। 10 वर्ष के बाद सन 36 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। और साक्षात्कारों का जब आप दुनियावी गुरुओं से नहीं मिला तो अपने भागीदार के पास कलकत्ते में पहुंचे। कहां पहुंचे? किस शहर का नाम? कलेक्लेस कट्टा। कि कलेक्लेस की दुनिया का कट्टा होना वहां से शुरू होता है, जहां भगवान बाप पहले प्रवेश करते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा में नहीं, उस भागीदार में प्रवेश करते हैं। जो भागीदार ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन देने का निमित्त बनता है, जिस भागीदार में साक्षात्कारों को क्लेरिफाई करने के लिए या ज्ञान का बीज डालने के लिए पहले प्रवेश करते हैं, अव्वल नंबर में, तो भागीदार देवी देवता सनातन धर्म का बीज डालने वाला साकार बीज रूप बाप साबित हो जाता है। शिव बाप आत्माओं के लोक परम धाम से सोल वर्ल्ड से अकेले आते हैं, परंतु इस साकार सृष्टि में अकेले ही काम करते हैं या कुछ साथ ही लेते हैं? कौन? त्रिमूर्ति। इसलिए एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, दो मूर्ति नहीं कहा जाता, चार आठ हजार मूर्ति, तेन 33 करोड़ मूर्तियां नहीं कही जाती। क्या कही जाती? त्रिमूर्ति शिव। शिव की आत्मा भी आत्मा है ना? आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम है आत्म की स्थिति में स्थित होकर के अपने अंदर सद्गुणों की, देवताई गुणों की स्थापना करना, अपने लिए नई दुनिया तैयार करना, देवताओं की दिव्य दुनिया। और दूसरा काम है अपनी आत्मा के अंदर जो दुर्गुण हैं, भर गए हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से, उन दुर्गुणों का विनाश करना, समूल विनाश करना। और तीसरा काम जो दिव्य गुण स्थापन किए हैं, उन दिव्य गुणों की पालना करना। आत्मा का भी ये तीन काम। कौन कौन सी शक्तियों के द्वारा? मन के द्वारा संकल्प विकल्प करके दिव्य गुणों अथवा भ्रष्ट गुणों की शूटिंग करना। क्या संगम युग है? कैसा युग है? मौजों का युग तो है, लेकिन मौज तब अनुभव कर सकेंगे जब सत संकल्प करेंगे। सत संकल्प माना सत्य, माने जो सत्य ज्ञान बाप ने सुनाया है, बेहद के बाप ने, उस ज्ञान के अनुसार संकल्प करेंगे तो कैसा युग की शूटिंग होती है? मौजों के युग की शूटिंग होती है। और अगर आत्मा की जो मन रूपी शक्ति है उसके द्वारा दुष्ट गुणों को, दुष्ट संकल्पों को चालू रखा, आसुरी संकल्पों को चालू रखा, तो कहां की शूटिंग होती है? है नरक की दुनिया की शूटिंग होती है। ये किसके द्वारा होती है? दाढ़ी मूछ वाले ब्राह्मणों के द्वारा होती है, ब्रह्मा के द्वारा होती है। और उनके जो सहयोगी बनते हैं, सहयोगी भी होते हैं ना, जन्म जन्मांतर में हर आत्मा का कोई न कोई आत्मा विशेष सहयोगी बनती है या नहीं बनती है? तो जो विशेष सहयोगी आत्मा बनती है उसमें भी ये दुर्गुणों और सद्गुणों की शूटिंग होती रहती है। आखरीन ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय शक्ति का 100% सदुपयोग करके जो आत्मा अपना पूरा तन 100% मन 100% तन की शक्ति 100% लगाकर सहयोगी बनती है उसका संगमयुगी नाम शिव बाप के साथ जुड़ जाता है। क्या नाम पड़ता है?
शिवशंकर
भोलेनाथ। ये भी कहते हैं शिवशंकर भोले भाले, मन शिव है भोले और शंकर है भाले। शिव का काम है सत्य ज्ञान सुनाकर सत्य दुनिया की सतयुग की स्थापना करना। उस सुप्रीम सोल का काम विनाशकारी है या स्थापनाकारी है? नई दुनिया का निर्माण करने आया है या विनाश करने आया है? है निर्माण करने आया है, वो विनाश करने नहीं आया।
पुरानी दुनिया,
नई दुनिया का निर्माण करने के लिए, नया संगठन बनाने के लिए पहले पहले माता की जरूरत है। यह वो काम बाप भी कर सकता है। माता बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। क्या नाम दिया माता का? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, संसार की बड़े थे बड़ी माँ। माँ और माताओं में विशेष खास गुण क्या होता है? कोई भी धर्म की माता हो, ऐसे नहीं देवी देवता सनातन धर्म की ही माता हो या ब्राह्मण धर्म की ही माता हो, माताओं का ये स्पेशल गुण है क्या? सहनशीलता। उस सहनशीलता के गुण में सबसे बड़ी माता कौन साबित होती है? ब्रह्मा का एक ही भी बच्चा चाहे अभी मौजूद हो चाहे मौजूद न हो, आत्मा तो है ही है, सूक्ष्म चोले में भी होगी, लेकिन कोई बच्चे ने कभी भी ऐसा नहीं कहते देखा होगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तुस आंखों से देखा। कोई तीखी बात कह के हमारे दिल को घायल कर दिया या कोई भी कर्म इंद्रियों से किसी प्रकार का दुख दिया, किसी ने सुना आज तक? नहीं सुना। तो ऐसी माँ का पार्ट बजाता है कौन? शिव की आत्मा। निमित्त किसको बनाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा को निमित्त बनाता है। ये एक मूर्ति हुई किसकी? ब्रह्मा की एक शक्ति हुई। दूसरी शक्ति है दिव्य गुणों की ब्राह्मणों में नंबर वार स्थापना करने के बाद फिर दुर्गुण भी तो स्थापित हुए हैं। दुष्ट संकल्पों का रिहर्सल हुआ है या नहीं हुआ है? तो उनका भी क्या करना है? खात्मा करना है। तो उसके लिए किसको निमित्त बनाता? राम वाली आत्मा को निमित्त बनाता।
क्यों?
वो बेचारा कहां बीच में मारा गया, क्यों निमित्त बनाता है? हाँ, बाप है, पुरुष का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। और पुरुष सब होते हैं शिव बाबा की दृष्टि में, कलयुग के अंत में सब पुरुष होते हैं दुर्योधन दुशासन। उनमें नंबर वन कौन निकला? अरे बोलो ना, बाप का नाम लेने में शर्म आती है? जैसा बाप वैसे बच्चे, शर्म की क्या बात? तो जो आत्मा बड़े से बड़ी दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाली, दुशासन दुष्ट शासन करने वाली, कलयुग के अंत में साबित होती है, सारी दुनिया के समक्ष प्रैक्टिकल में या मन में, प्रैक्टिकल में कैसे? रावण कह दो, रावण माने रुलाने वाला, रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को सबसे जास्ती रुलाता है, जो आत्मा, वो क्या साबित हुई? रावण। कलयुग में आकर के राजाएं तो अपनी प्रजा को रुलाते रहे हैं, या मोस्टली खुश रखते रहे हैं, खास करके भारत की प्रजा को राजाओं ने बहुत रुलाया। कैसे रुलाया? लड़ाई झगड़ा का कारण क्या होता है? अपवित्रता। तो राजाओं ने क्या गलती की? अनेक रानियां रखी, सारी प्रजा की मुकाबले ढेर की ढेर रानियां रखेंगे राजाएं, तो बारी बेचारी प्रजा क्या करेगी? प्रजा के पास तो इतना धन दौलत नहीं होता है, क्योंकि द्वापर कलयुग में रसम चलती है, आधे में राजा आधे में रैयत। सारे राज्य की जितनी कमाई होती है उसमें आधे में राजा का परिवार पलता है, रिश्तेदार पलते हैं, और आधे में रैयत पलती है। तो जब राजा ऐसा होगा कि प्रजा का आधा सुख राजा ही भोगेगा, तो प्रजा दुखी होगी या सुखी होगी? सुखी वो प्रजाजन होंगे जो राजा के साथ बेवफाई पर उतर आएंगे। कैसी बेवफाई है? हाँ, राजा तो बहुत साहूकार होने के कारण खुलेआम मैदान ढेर की ढेर रानियां रखने में सक्षम है, प्रजा के वो दूषित वर्ग क्या करेंगे फिर? है, चोरी चकारी करेंगे या नहीं करेंगे? चोरी चकारी से सुख भोगते हैं इंद्रियों का। वो भी गुप्त रूप में ढेर शादियां करते हैं, बाबा ने शादी की परिभाषा बताई है, ढोल मजीरा बजा लेना शादी नहीं, बितार में जाना माना शादी। तो ऐसे कलयुगी राजाओं के बीच उन सब का बाप कौन साबित होता है? अरे सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है कोई है? राम वाली आत्मा हर बात में बाप है या कुछ बातों में बाप है कुछ बातों में नहीं? अच्छी बातों में ही सब का बाप है या बुरी बातों में भी बाप है? मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं? जरूर कोई है कि नरक की दुनिया के जो बड़े से बड़े बादशाह हुए हैं, हिटलर अच्छा बादशाह था बुरा था? हिटलर शाही अच्छी राजाई है या बुरे से बुरी राजाई है? बुरे से बुरी राजाई है। अपनी मनमानी करना, अपनी बात मनमाना, दूसरों की कुछ भी नहीं मानना। तो देखो दुनिया में जो दूसरे दूसरे धर्मों में बड़े से बड़े हिटलर शाह हुए, उन बड़े से बड़े हिटलर शाहों का भी बाप कोई है कि नहीं? इसलिए मुरली में बाबा बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। बच्चे समझते आहा हम देवता बनेंगे, हम देवताओं का बाप महादेव आया हुआ है, बहुत खुश हो गए। तो देखो ये शिव की दूसरी मूर्ति हुई, क्या काम है? विनाश काय से होता है, है? अपवित्रता से। कैसी अपवित्रता है? व्यभिचारी, अनेकों से संबंध रखना, एक से संबंध करना, ये देवताई स्वभाव की बात है। और मनुष्य क्या करते रहे है? द्वैतवादी युग से, द्वापर से देवताएं होते हैं अद्वैत, क्या दूसरी पत्नी रखते हैं? माताएं दूसरा पति करती हैं, इसलिए वो है अद्वैत। दूसरा धर्म नहीं, दूसरा राज्य नहीं, दूसरी भाषा नहीं, दूसरा कुल नहीं, दूसरा वंश नहीं, दूसरा मत भी नहीं, सबका एक मत। और द्वैतवादी द्वापर से क्या होता है? सब बातों में दो दो से चार, चार से आठ वृद्धि होती जाती। तो इन द्वैतवादियों का बाप कौन निकला? राम बाप। इसलिए मुरली में बोला क्या है? राम ही रावण बनता है। कब? हाँ, इस दुनिया के बड़े से बड़े देहधारी धर्म गुरु जो अपने को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, उन सब का बाप अंत में प्रत्यक्ष होता है। वो देहधारी धर्म गुणों ने द्वापर युग से सृष्टि को नरक बनाया या स्वर्ग बनाया? तो क्या पूरा नरक बना पाते हैं? ऐसा नरक जहां अति का अंत हो जाए, नहीं बना पाते। तो तो दुनिया के लोग जब बहुत दुखी हो जाते हैं, चाहे धन में साहूकार हो, चाहे तन के हिसाब से बड़े से बड़े पहलवान हो, चाहे मन के हिसाब से बड़े से बड़े वैज्ञानिक ही क्यों न हो, इस आतंकवादी दुनिया के बढ़ते 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 अंत में सभी में डर फैल जाता है, दुखी हो जाते हैं या सुखी होते जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नारकीय दुनिया का उन्हें अंत दिखाई नहीं देता है, अंत दिखाई देता है दुनिया वालों को, भले एटमिक एनर्जी तैयार हो गई तो भी बड़े बड़े ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, महलमानियां, अटारियां बनाते ही चले जाते, समझते हम स्वर्ग में हैं। ये नहीं बुद्धि में आता कि ये अल्पकाल का स्वर्ग हम तैयार कर रहे हैं, मायावी स्वर्ग, थोड़े समय के लिए स्वर्ग दिखाई देता है, फिर क्या होने वाला है सो किसी को पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं विनाश के काल में बच्चों को बहुत दुख नहीं देना चाहता, बहुत लंबे समय तक का, इसलिए जब मैं आता हूँ तो स्थापना के साथ साथ विनाश का कार्य भी कराता हूँ और पालना के लिए भी कोई आत्मा को निमित्त बनाता हूं। तो शंकर द्वारा विनाश, मुरली में तो बोलते हैं शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। अरे जब कुछ भी करता नहीं, पाप नहीं करता और पुण्य भी नहीं करता, तो उसका पुनर्जन्म का हिसाब किताब बनेगा है? इस पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं बन सकता। कोई आत्माएं माँ बाप के रूप में निमित्त नहीं बनेंगी, जो हिसाब किताब करके उस बच्चे को, उस आत्मा को बच्चे के रूप में जन्म दें, वो निमित्त बनेगी? नहीं बन सकती। तो गीता में भी लिखा है कि संपूर्ण आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया का भी विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगेगा, और मुरली में भी बोला बाबा ने, मैं विनाश ऐसे से करवाता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। अरे कोई का विनाश हो गया, तन का विनाश होगा, धन का विनाश होगा, पागलपन आ जाएगा, तो दुखी होगा या सुखी होगा? विनाश काल में हाहाकार होगा सारी दुनिया में या खुशी का जयजयकार होगा? जिनका जय जयकार होगा उनके पाप पुण्य नहीं बने होंगे,
बने होंगे।
जब पाप बने होंगे तो धर्मराज की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, है? माया रावण के प्रभाव में नहीं आएंगे। बाबा ने तो बोला माया किसी को छोड़ती नहीं है, क्या? किसी को नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि गांवड़े की माताओं में गीत चल रहा है अभी भी, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर को भी छोड़ा नहीं, शंकर की दाढ़ी ही रह गई रे। तो माया किसी को छोड़ती नहीं, यहाँ तक कि सारी दुनिया को बरबस शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे योग बल से, परंतु 100% योग बल तो एक में ही होगा या सभी में आएगा, वो तो एक की बात हो गई, बाकी योग बल में कुछ न कुछ कमजोरी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर योग बल में कमजोरी रहेगी तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी, या तो कर्म भोग भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोग भोगना अच्छा है या धर्मराज की सजा खाना अच्छा है?
धर्मराज की सजा खाना अच्छा है।
धर्मराज की सजा खाएंगे, वो सजा तो अत्यंत कठिन है, बहुत कड़ी सजा है, ऐसी सजा कि 63 जन्म में कभी भी नहीं भोगी होगी, गर्भ जेल में भी नहीं। उस सजा खाने से नुकसान ही नुकसान है। हाँ, देह का कर्म भोग भोग लिया तो सजा कम होगी या नहीं होगी? कम हो जाती है। क्यों? कि कर्म भोग से दुख भोग लिया है इस अंतिम जन्म में, चाहे वो बीमारी से भोगा और चाहे वो बर्फ में दब करके भोगा, बर्फ में दबेंगे तो भी तन को कुछ महसूस होगा या नहीं होगा? देहबान जितना भी होगा उतना महसूस जरूर होगा, परंतु फायदा ये है कि धर्मराज की सजाओं से पद नीचा हो जाता है। जितना जास्ती धर्मराज की सजा खाएंगे उतना पद भी नीचा हो जाए, और कर्म भोग अगर शरीर से भोग लेंगे तो क्या होगा? पद नीचा नहीं होगा, दुख तो भोगेंगे लेकिन पद बरकरार बना रहेगा। तो वो आत्मा है जो धर्मराज की सजा भी नहीं खाती, वो कितनी है? आठ है। तो उन आठ में बर्फ में दबने की सजा होगी या नहीं होगी? सबकी होगी। तो कोई की नहीं भी होगी? तो जिनकी नहीं होगी वो तो पहले नंबर का जो विनाश की शूटिंग होती है कौन से सन में? 76 में। उन आत्माओं की बात है, बाकी दूसरी बार विनाश की शूटिंग होती है उसमें उन दो आत्माओं को छोड़ करके बाकी जो अष्ट देवों में हैं उनको कुछ न कुछ तन की सजा भोगनी जरूर पड़ेगी। मान लो बर्फ में भी दबेंगे तो सजा भोगेंगे कि नहीं? धर्मराज की सजा नहीं भोगेंगे, लेकिन प्रकृति प्रकृति नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये कुदरत प्रकृति जो है वो माया से हाथ मिला चुकी है, इसलिए धर्मराज से भी बहुत पावरफुल है। धर्मराज कौन है? धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल भी उस माया के मायावी कर्म के आगे हार्ट फेल होकर के गई या रह गई? कैसे? क्या कर्म किया? अब माया ने ऐसा क्या बुलंद कर्म कर दिया जो ब्रह्मा का भी हार्ट फेल हो गया? भूल गए? बाप को तो बढ़ेर नहीं पहचानते। अभी एडवांस पार्टी में सबने पहचान लिया क्या? पूरा आज पहचानते, कल संशय आने लगता है। कैसे? उस समय थोड़ा ही बेमुख कर दिया ना, उस समय बाप प्रत्यक्ष हुआ था 18 जनवरी 69 के बाद।
ब्रह्मा दादा को फॉलो किया
है?
ब्रह्मा दादा को फॉलो किया।
फॉलो किया? फॉलो तो फिर मम्मा ने ज्यादा किया कि कुमार का दादी ने ज्यादा फॉलो किया?
बाबा मुरली चंद की और दृष्टि का व्यवचार।
दृष्टि का दान तो ब्रह्मा बाबा भी देते थे या नहीं देते थे? क्या उन्हें 24 घंटे शिव ज्योति बिंदु याद रहता था? निराकारी स्टेज थी, धर्म पिताओं की तो निराकारी स्टेज होती है। क्राइस्ट को देख लो, चेहरे को ध्यान से देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज साबित होती है या साकार दुनिया में दिखाई देते हैं? निराकारी है। तो ब्रह्मा कोई थोड़े ही अब्बल नंबर का धर्म पिता है, देवी देवता सनातन धर्म का। अरे भूल गए,
बच्चों ने सारी प्रॉपर्टी अपने
नाम। हाँ, माया जो है वो अपने भक्त बच्चों को ऐसी दुष्ट मति देती है जिस दुष्ट मति के आधार पर है, बच्चे बड़े बड़े उल्टे काम करने लग पड़ते हैं माया की मत पर। तो ऐसा कौन बच्चा था? हाँ, माया की नगरी। कौन सी? बंबई का कोई बच्चा, उसको ऐसी दुष्टमति दी क्या कि सारी प्रॉपर्टी ऐसा काम करो जो सारी प्रॉपर्टी हमारे तुम्हारे नाम आ जाए। बाबा ने मुरली में भले डायरेक्शन दिया कि तुम बच्चे अपने परिवार को, ब्राह्मणों की संस्था को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से हम क्यों रजिस्टर्ड कराएं? हमारी ईश्वरीय शिष्टाचारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, बन रही है, तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के नीचे हम क्यों काम करें? लेकिन माया ने जो ऐसी पट्टी पढ़ाई कि बाबा की मत भूल गई और सारी संस्था मुट्ठी में लेने का विचार पक्का हो गया। क्रिश्चियन ने क्या किया है? क्रिश्चियन ने भी ऐसा ही किया, सारे भारत की सत्ता को अपनी मुट्ठी में लेने का उपक्रम किया या नहीं किया? क्रिश्चियंस की, क्राइस्ट की और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट का जो आधार मूर्त है, जो आधार मूर्त आत्मा है, उसमें ये संस्कार समाये हुए हैं क्रिश्चियंस के। क्या? कि सारी सत्ता को अपनी मुट्ठी में ले लो, भारत की सत्ता को। भारत माने बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, उसकी जो सत्ता है भारत में, उसे अपने हाथ में कर लो। ज्ञान की सत्ता है या रुपए पैसे की सत्ता है? ज्ञान की सत्ता। तो अपने नाम और कुमारका दादी के नाम रजिस्ट्रेशन में वो सत्ता अधिकृत करा ली। आसुरी गवर्नमेंट से और ब्रह्मा बाबा को जब ये पता चला तो हार्ट फेल हो गया। इसलिए बोला कि शिव की तीन मूर्तियां हैं, एक है स्थापनाकारी, एक है विनाशकारी और एक है पालनाकारी। इन तीन मूर्तियों की यादगार में आज भी हमारे देश में झंडा बना हुआ है, विश्व विजय करके दिखला भी। उन झंडा गान करने वालों को समझाओ, एक कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? तो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग के भगत हैं टोटल। जो बाप के ज्ञानी बच्चे हैं, बाप सत्य तो बच्चे भी सत्य। सतयुग में स्पेशल स्थान प्राप्त करने वाले उन ज्ञानी आत्माओं को बाप पसंद करता है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो बाप कहेंगे ना जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी संभालो, जल्दी जल्दी समझाओ। बच्चे तो चाहेंगे ना जल्दी नई दुनिया की स्थापना हो। देखो नया मकान बनता रहता हो और बच्चे पुराने मकान में बैठे हो, छत चटक रही है, पानी टपक रहा है, नींद आ नहीं रही है, बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो पुका पुराने मकान में बैठे हुए बच्चे दुखी होंगे या सुखी होंगे? ये भी सृष्टि रूपी मकान है। कलयुग के अंत में बाप आया हुआ है। पुराने मकान में बच्चे बैठे हैं या नए मकान में बैठे हैं? तो क्या कहते होंगे दिल में कि जल्दी जल्दी नई दुनिया की स्थापना हो या देर लगे? जल्दी जल्दी हो, तो बच्चे जल्दी जल्दी कहेंगे ना बाबा बाबा जल्दी जल्दी मकान बनाओ तो हम नई दुनिया में जावे। बच्चों को भी उतावलापन तो होता है ना, है भी क्यों लगा दिया है? हाँ बाबा को भी लगता है इस पुरानी दुनिया में आया हुआ हूँ, है पतित तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ, पतित कामी काटे में आया हुआ हूँ, है इससे जल्दी पीछा क्यों उठे? यहाँ वास्तव में उतावलापन होता नहीं है। कहाँ? नहीं वहाँ नहीं, यहाँ। ऐसा क्यों कहा? दो बातें क्यों कर दी कि बच्चों को उतावलापन होता है नई दुनिया में जावे, फिर बोल दिया यहाँ संगम युग में वास्तव में एब्जेंटी होती नहीं है, उतावलापन होता नहीं है, ये क्यों बोल दिया? है ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ हमें बेहद का बाप मिला हुआ है, जिससे हमों को अनेक जन्मों का जन्म जन्मांतर का बेहद का सुख मिलना है। हद की दुनिया में तो हद के बाप हुए, एक जन्म का सुख दे के गए, प्रॉपर्टी दे करके गए, और ये बाप 21 जन्मों का ही नहीं, 21 जन्मों के आधार पर है 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो यहाँ संगम युग में वास्तव में बच्चों में नई दुनिया में जाने के लिए उतावलापन होना नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? है यही बात है। क्या बात है? उतावलापन है नई दुनिया में जाने का,
बाप नहीं मिलता आगे जाके, बाप नहीं मिलता
और यहाँ बाप मिला है तो दुख नहीं होता है, दुखी महसूस नहीं करते? अरे नए नए बच्चे आए हैं तो नयो नयो को तो लास्ट में आए तो फास्ट पुरुषार्थ होता है, इसलिए उनकी तो
सदगति की सतयुग की शूटिंग होती है पहले पहले, तो वो तो यही कहेंगे। क्या कहेंगे? है बाप इस दुनिया में बना रहे और हम मौजों के युग में मस्ती मारते रहे। अरे जो पुराने पुराने बुढ़े बुढ़िया बैठे हुए हैं उनके दिल से भी तो पूछो। है पुरुषार्थ करते करते तंग आ गए हैं या है?
गोडिया तो तंग आए गोडे तो ना।
हाँ जी, ज्वाइंट होते होते ज्वाइंट पेन हो जाता है। बाप तो कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा मन बुद्धि बनाओ कि सिवाय बाप के साथ ज्वाइंट होने के कोई भी संबंध से दूसरा कोई संबंध याद ना आए। लेकिन माया क्या करवाती है? माया अनेकों के साथ बुद्धि का योग जुटवाती है, ज्वाइंट कर देती है या डिटैच कर देती है? हैं? तो जिन्होंने लंबे समय तक इस सुहावने संगम युग में बाप के अलावा औरों के साथ संबंध जोड़ करके बुद्धि का ज्वाइंट पक्का कर दिया है, तो अनेक जन्मों की शूटिंग हुई या नहीं हुई? ज्वाइंट पेन होगा कि नहीं होगा? बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि इस समय में हम बच्चों का मर्तबा और जन्मों के मुकाबले बहुत ऊंचा होना है। कितना ऊंचा? बहुत ऊंचा माने कितना ऊंचा?
सबसे ऊंचा।
सबसे ऊंचा MBBS डॉक्टर बन के बड़े हॉस्पिटल के सर्जन बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? हाँ, और जन्मों में तो बड़े बड़े हिटलर, मिसोलनी, बोनापार्ट, नेपोलियन, कितने बड़े बड़े विश्व का मर्तबा पाने के आकांक्षी हुए, लेकिन सारे विश्व पर कोई ने विजय नहीं पाई। और अभी हमको क्या मर्तबा मिलने वाला है? 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 हमको मर्तबा मिलना वाला है विश्व का मालिक बनेंगे। विश्व का मालिक एक बनेगा या सब बनेंगे? एक बनेगा, सब बनेंगे। कैसे? यथा राजा तथा प्रजा। और जन्मों में जो राजाएं होते हैं वो प्रजा को अपना बच्चे की तरह पालना नहीं करते हैं, क्या अपने बच्चे की तरह रोटी, कपड़ा, मकान, दवा दारू का इंतजाम करते हैं? अपने बच्चे की तरह करते हैं? नहीं करते। और यहाँ यहाँ बाप जो भी परिवार के जितने भी बच्चे हैं 4.5 लाख बाप के बच्चे, जो बाप को पहचानने वाले होने की कैसी पालना करते हैं? है दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा अकाल दुकाल पड़ जाए, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। दुनिया के करोड़पति, शंखपति, पद्मपति, उनके नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रह जाएंगी, उनके हाथ फेल होंगे। क्या
हो गए
तुम बच्चों के हार्ट फेल नहीं हो सकते। तो इस समय में दुनिया वालों के मुकाबले हमारा मर्तबा बड़ा ऊंचा है या नीचा है? तो सतयुग में जाने की वो तावलापन होना चाहिए या इसी संगम युग में उतावलापन होना चाहिए कि हम इन इंद्रियों के भ्रष्ट कर्म से कब छूटे और अतिंद्रिय सुख के मर्तबे में कब जावे? देवताओं के सुख से ऊंचा सुख है अतिंद्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किससे पूछो? उन गोप गोपियों से पूछो जिन्होंने भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। अनेक प्रकार के गुप्त संबंध इंद्रियों के साथ प्रैक्टिकल में जोड़े हैं। उन बच्चों से पूछो कैसे देखने में आवेंगे? अरे देखने में आवेंगे या नहीं आवेंगे? कैसे?
जगन्नाथ के मंदिर में।
नहीं, तुम बच्चों की आखिरी परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मना, ये अंत की परीक्षा है। तो जो आदि पुरुषार्थ के आदि में जिनकी ऐसी अवस्था बनती है, कैसी? कि जब से बाप को पहचाना, देह के संबंधी नहीं, देह के संबंधियों को याद नहीं करेंगे, देह के संबंधियों के धंधे में बुद्धि लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तन की सेवा देह के संबंधी मात पिता ही क्यों न हो, तन की सेवा उनको नहीं देंगे। किसको देंगे? बाप को देंगे। और मन के संकल्प भी बाप की सेवा में अर्पण करेंगे। तो ऐसे नष्टो मोहा बच्चों को संगम युग में बाप के प्यार की पालना मिलेगी या नहीं मिलेगी? और बाप के प्यार की पालना जिनको मिलती है वो बच्चे याद में मौज में रहेंगे या दुख का अनुभव करेंगे? तो यहाँ संगम युग में लंबे समय तक मौज का अनुभव करना माना जन्म जन्मांतर मौज में रहेंगे, सुख में रहेंगे या दुख में भी रहेंगे? सुख में जाती रहेंगे। इसलिए एक मुरली में बोला, कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, अंतिम जन्म में तो माया किसी को छोड़ती ही नहीं। तो बिल्कुल तुम्हारा मर्तबा बड़ा ऊंचा है संगम में, क्योंकि हम अभी बाप के साथ हैं। किसके साथ? कैसा बाप? बेहद का, दुनिया का ऊंचे से ऊंचा बाप। बाप से हम ज्ञान सीख रहे हैं। किससे सीख रहे? तुम लोग को बाप ज्ञान नहीं देते रहे है? हाँ, जन्म जन्मांतर जो भी हमको ज्ञान मिला उसमें कुछ न कुछ अज्ञान मनुष्यों के विकारी जन्मों का भरा हुआ था। और ये बाप कैसा है? बेहद का बाप कैसा है? है एकदम निर्विकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, एवर प्योर। तो एवर प्योर बाप से एवर प्योरिटी का वर्षा लेके जाएंगे और धर्मों के मुकाबले या कम वर्षा लेके जाएंगे? और धर्मों के मुकाबले बहुत ऊंचा वर्षा लेके जाएंगे। बोला है और धर्म वालों को तो आधा सुख और आधा दुख मिलता है इस सृष्टि में, और तुम बच्चों को एवरेज में पौने हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख है। कलयुग में आकर के तुम दुखी होते हो। तो ये सत्य ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान माने जानकारी। काय की जानकारी? झूठ की। सच्चाई की जानकारी। सृष्टि के आदि मध्य अंत की क्या सच्चाई है? हमारे आत्मा के अंदर क्या क्या सच्चाई है जो हम जानते हैं या नहीं जानते, वो बाप आकर के बताता है। हर आत्मा के अनेक जन्मों की सच्चाई इस संगम युग में मालूम होती है कि सच्चाई में हमारा पार्ट क्या है। तो ये ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास जो हमको अभी मिल सकता है, कभी संगम युग में मिल सकता है और कोई युग में नहीं मिल सकता। बस फिर ज्ञान सागर को सतयुग में आने की दरकार ही नहीं होगी। क्या? कोई भी युग में आकर नहीं की दरकार नहीं होगी। क्यों?
आप सुबह मना के जाते हैं,
इसलिए दरकार नहीं होगी कि नया मकान बना करके दे दिया वर्षे में नई सृष्टि का। तो जब तक मकान पुराना न हो, कोई बाप बीच में ही मकान को तोड़ करके नया मकान बनाता है क्या? ये तो मनुष्य गुरुओं ने उल्टा ज्ञान सिखाई दिया। संभवाम युगे युगे, उसका उल्टा अर्थ लगा दिया कि हर युग में भगवान बाप आते हैं। सतयुग में आते हैं नरसिंह अवतार लेकर, त्रेता में आते हैं राम भगवान बनकर, द्वापर में आते हैं कृष्ण भगवान बनकर। अरे हर युग में बाप को आने की क्या दरकार है? एक तरफ कहते हैं हमारी आत्मा सो परमात्मा, एक बार हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारी हो जाएगी तो हम सदा काल के लिए निर्वाण धाम में जाकर बैठेंगे, कभी इस मृत्यु लोक में नहीं आवेंगे। और भगवान को बार बार बैठा दिया हर युग में। कोई कोई कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। बाबा खुद कहते हैं ना, मैं सतयुग में आकर के क्या करूंगा, सत्य ज्ञान से सतयुग की स्थापना तो कर दी ना। हम आते हैं सत्य ज्ञान देने के लिए, सत्य गति करने के लिए। क्या कि दुर्गति करने के लिए है? जैसे कृष्ण भगवान के द्वारा दिखाई दिया कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी दुर्गति करने के लिए है। भगवान का यही धंधा है, दुर्गति करने के लिए आता है। एक तरफ कहते हैं एक सदगुरु निराकार, वो ही सतगुरु है और बाकी सब गुरु वो एक है और बाकी सब गुरु कैसे हो गए है? एक सदगुरु है तो बाकी झूठे साबित हो गए। तो एक तरफ कहते हैं एक सदगुरु निराकार और दूसरी तरफ ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि भगवान द्वापर के अंत में कृष्ण बनकर आता है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा है सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है और द्वापर कलाहीन हो जाता है। द्वापर के अंत में, द्वापर में आदि में 8 कलाएं रह जाती हैं। अरे जब पूरे युग में 8 कलाएं रह जाती हैं तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनकर के कहां से आया? ऐसा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? जैसा युग वैसे बच्चे। तो बाप कहते हैं सदगति तो हमको अभी देनी है ना, जब सारी मनुष्य सृष्टि की दुर्गति हो जाती है तब सबको आकर के मैं सदगति देता हूं सच्चा ज्ञान सुनाकर, सच्चे बाप की प्रैक्टिकल पहचान देकर। जब तक सत्य बाप का प्रैक्टिकल ज्ञान न मिले, पहचान न मिले, तब तक कोई भी आत्मा सदगति में नहीं जा सकती। सदगति दो प्रकार की है, एक है सत्य धाम में, वहां आत्मा दुखी होती है, दुर्गति होती है नहीं, और उससे भी ऊंची सदगति है सुख धाम में, जहां हम प्रैक्टिकल में सुख से सुख भोगते हैं, देह की इंद्रियों के साथ सुख भोगते हैं। तुम्हारा आत्मा क्या चाहती है? देह भी रहे, जीवन भी रहे और जीवन में सुख शांति भी रहे। तो दोनों प्रकार की मैं सदगति देता हूं, देवात्माओं को भी देता हूं और मनुष्यों को भी, 500-700 करोड़ मनुष्यों को भी सदगति देता हूं। और ये सदगति हमको अभी संगम युग में देनी है। क्या कहा? अभी संगम युग में देनी है कि दे दी है कि दे रहा है, है? क्या सच्ची बात है? सदगति देनी है, दे दी है या दे रहा है? दे रहा है,
देनी है,
देनी है। अभी दुर्गति दे रहा है, है?
पाने के लिए तैयारी कर रहा है,
सदगति पाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है,
दे रहे हैं,
सदगति दे रहे हैं, सदगति नहीं दे रहे, ये आगे बैठे कहते हैं सदगति दे रहे हैं। सतगति जो है जो सत्य आत्मा है, सिखों में गाते हैं, होसी भी सत्य है भी सत्य क्या, और पास्ट में भी सत्य ही है, न कि प्रजापिता है, है? प्रजापिता तो दर दर की ठोकर है खाने वाला, जैसे और धर्म पिताओं ने आकर के दर दर ठोकरें खाई या नहीं खाई, धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े, खाने पड़े। तो ये बात किसके लिए, कौन सी आत्मा के लिए लागू होती है? हाँ, सदगति दाता का पाठ बाप बेहद का बचाते हैं। फिर बताओ, सर्वति दुर्गति की दाता का पार्ट कौन बजाता है? बाबा ने अच्छा आतर के पकड़ा, बताओ माया दुर्गति काहे से होती है? हैं? रावण से दुर्गति होती है, राम से सदगति होती है। रावण से दुर्गति होती है तो रावण के चित्र बनाते हैं कि नहीं? किसी ने चरित्र किया है तब चित्र बनाते हैं, या बिना चरित्र प्रैक्टिकल में हुए चित्र बनाए जाते हैं? है तो कौन है रावण? आखिरी ने क्या बताया? राम ही रावण बनता है। कब बनता है? जब दुनिया के बड़े से बड़े देहधारी मनुष्य, देवात्माएं, राक्षसी आत्माएं हाथ खड़े कर देती हैं, क्या कि हमसे इस दुनिया की सदगति भी नहीं होनी है और पूरी दुर्गति भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जो अति का अंत हो जाए, तब शिव बाप ऐसी मूर्ति को खड़ा करते हैं जिसके ऊपर कोई पाप न लगे। कैसे पाप नहीं लगेगा? पाप कर्म करेगा तो पाप नहीं लगेगा, है? हाँ, देखो उसके पाप कर्म का यादगार क्या बना हुआ है? जो कर्म कर रहा है, जिस इंद्रिय से कर्म करने से बड़े पाप लगते हैं, कौन सी इंद्रिय सबसे जास्ती पापी बनाती है? ताम इंद्रिय। इसलिए बोला ताम जीते इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय जीते? ताम इंद्रिय। उसी ताम इंद्रिय का यादगार दिखाया गया शिव के मंदिर में, शिवलिंग। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है? है? गीता में तो लिखा है जैसा कर्म भगवान करते हैं सारी दुनिया उन कर्मों का अनुगमन करती है आगे पीछे, लिखा कि नहीं? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। तो जो कर्म भगवान कर रहा है वो ही कर्म मनुष्य कर रहे हैं, फिर अंतर क्या हुआ?
सृष्टि के लिए अनर्थ कर रहे हैं।
है?
भगवान सृष्टि के लिए अनर्थ कर रहे हैं।
भगवान सृष्टि के लिए अनर्थ कर रहे हैं?
सृष्टि के लिए अनर्थ कर रहे हैं।
भगवान सृष्टि के लिए अकल्याण कर रहे हैं।
कल्याण
नाम है शिव, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। वाह भाई वाह,
कल्याण कर रहे हैं,
कल्याण के लिए अनर्थ कर रहे हैं। तो तुम भी करो, साथ में साथी बन जाओ, हैं? करोगे कि नहीं? कुमार हो कि अदर कुमार? बताओ है अदर कुमार है तो भी संकल्प आ रहा है कि हम बाप के साथ ही बनेंगे, लेकिन बाप ने तो मुरली में मना कर दिया। शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। मंदिरों में जो दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं शिवलिंग के, उन मंदिरों में किसकी पूजा की जाती है? है भगवान की पूजा की जाती है क्या? बाप तो कहते हैं तुम बच्चे भक्ति मार्ग में अपने ही रूप की पूजा करने लग पड़ते हो। क्या अपनी ही महिमा अपने शास्त्रों में करने लग पड़ते हो? क्या राम वाली आत्मा तुलसीदास के रूप में रामायण लिख लेती है? सूरदास कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण के चरित्र लिख देती है? सूर सागर लिखती है? तो देखो ये जो लिंग बना हुआ है ये किसकी यादगार है? जिस भक्ति मार्ग में पहले पहले किसने इसकी पूजा की है? विक्रमादित्य ने पूजा तो की। विक्रमादित्य द्वैतवादी दुनिया का राजा था या देवताई दुनिया का राजा था? है द्वैतवादी दुनिया का राजा था। द्वैतवादी दुनिया के जो राजाएं होते हैं वो मंत्रणा देने के लिए मंत्री क्यों रखते हैं? महामंत्री खुद बेवकूफ होते हैं तो सलाह लेने के लिए होशियार को रखते हैं या बेवकूफ को रखते हैं? तो किसने सलाह दी कि मंदिर बनाओ शिवलिंग का और उसकी पूजा करो? है माना भक्ति मार्ग में जो राम वाली आत्मा है जो लिंग रूप में पूजी जाती है उस लिंग को पूजने की बात पहले पहले किसकी बुद्धि में आई? अरे प्रजापिता माँ नाम मत लो, जो मुरली में बोला बोलो। विक्रमादित्य के गुरु की बुद्धि में आई, विक्रमादित्य के मंत्रणा देने वाले की बुद्धि में आई, जिसने मंत्रणा दी क्या है? शिवलिंग की पूजा करो। मंत्रणा देने वाला जानता था कि शिवलिंग भगवान का रूप है, है?
जानता था तभी तो उसमें क्या थी?
शिवलिंग भगवान का रूप है? जो लिंग है वो तो यादगार है, उस साकार स्वरूप की यादगार है। जो साकार स्वरूप ऐसी गहरी याद में टिकता है कि मन बुद्धि में आत्मा में इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, एक निराकार की स्मृति रहती है, एक शिव दूसरा न कोई। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं ब्रह्मा से लेकर के और कलयुग अंत तक के महर्षि दयानंद वगैरह वगैरह सब निराकार को मानने वाले हैं, याद करने वाले हैं या साकार को याद करने वाले हैं? है निराकार को। और उनके फॉलोअर्स? अच्छा, अपने धर्म पिता को नहीं याद करते, उसके चित्र नहीं रखते है? हिंदुओं में शंकर के चित्र रखते हैं, मुसलमानों में मक्का का चित्र रखते हैं, और क्रिश्चियंस में क्राइस्ट का चित्र रखते हैं, बौद्धियों में बुद्ध का भगवान का भगवान समझकर चित्र रखते हैं। तो देखो, हर धर्म में साकार को सदगुरु मान लिया है भगवान, उनकी बुद्धि में साकार ही याद आता है, निराकार की याद कठिन है, ये सहज है, कठिन है। गीता में भी लिखा है, अव्यक्ताद् गतिर् दुःखम् देह बद्धिर् अवाप्यते। अव्यक्त को याद करने से, अव्यक्त माने निराकार, जो आंखों से नहीं देखा जाता, उसको याद करने की जो बुद्धि की गति है, बुद्धि की तीव्रता है, वो देहधारियों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और सभी धर्म पिताओं ने दुख भोगा या नहीं भोगा? धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? तो उन धर्म पिताओं, उन बापों का बाप कौन है प्रतिकल में? वही राम वाली आत्मा, जिसे मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण वाली आत्मा नहीं, ब्रह्मा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना नहीं करता है। फिर हाँ, वो ब्रह्मा भी रचना है, एक रचयिता बाप की। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? रचयिता तो साकार, रचना भी साकार होती है। तो देखो, जो मंदिर बने हुए हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिवलिंग के, उनमें जो लिंग मूर्ति बनी हुई है, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए हैं, वो बुद्धियोग की बात है या साकार रूप की यादगार है?
साकार
है। बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्मा की यादगार है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जिसको शरीर तो है, लेकिन शरीर की इंद्रियों की याद नहीं है, तो ऐसी स्टेज कैसे दिखाएं? क्या हाथ पांव नाक आंख कान दिखाएं लिंग को? मनुष्य के शरीर रूपी रथ में इंद्रियों को काट दिया जाए, सर उड़ा दिया जाए, बाहें उड़ा दी जाए, टांगे उड़ा दी जाए, तो क्या रह जाएगा? लिंग ही रह जाएगा। तो लिंग की यादगार बनाने की प्रेरणा विक्रमादित्य को किसने दी है? किसने दी? गुरु ने दी। वो मनुष्य गुरु था या देवात्मा था? देव था, देवता था, मनुष्य गुरु था। मनुष्य गुरु जो है वो स्वार्थी होगा,
अपना ही पूजा कर रहा है,
या परमार्थी होगा? जिनको जिनको अपना रथ होता है वो सब स्वार्थी होते हैं। द्वापर युग का आदि गुरु वो भी स्वार्थी था, उसने सतो प्रधान स्वार्थी था, इसलिए उसने जान लिया क्या कि देहधारी मनुष्यों के द्वारा गीता किसने लिखी और गीता में ये श्लोक किसने लिखा होगा? वेद व्यास ने लिखा। तो वो वेद व्यास पुराने से पुराना गुरु है या नहीं? वो ही आत्मा है ना जो ज्ञान में रत रहती है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, आदि में भी लगा रहने वाला, मध्य में भी लगा रहने वाला और अंत में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, चाहे वाचा से, चाहे प्रैक्टिकल शरीर की कर्मेंद्रियों से और चाहे मनसा से। ऐसा ही कर्म करता है, इसलिए उसने जो शिक्षा दी विक्रमादित्य को वो कल्याणकारी शिक्षा दी या अकल्याणकारी शिक्षा दी? कैसे? अपने ही रूप की शिक्षा दे दी पूजा करने की,
शिव की हीरा लगा दी।
हाँ, जो पहला मंदिर बना सोमनाथ का मंदिर, उसमें हीरा जड़ा हुआ था। ये किसने बताया? उसी ने बताया कि इसमें हीरा जड़ो। निराकार की यादगार है हीरा और साकार की यादगार है जिसमें हीरा प्रवेश है, लेकिन वो साकार बाप समान की यादगार है या देह धारण करने वाले देहधारी की यादगार है? बाप समान की यादगार है। तो बाप समान एक सेकंड में बन सकता है या पुरुषार्थ करने के लिए टाइम चाहिए? हाँ, तो टाइम भी बता दिया मुरली में। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ये 40 से 50 वर्ष है, 50 वर्ष के अंतिम क्षण में, अंतिम सेकंडों में, अंतिम घड़ी में, अंतिम सप्ताह में वो सबसे जास्ती तमो प्रधान होगी। वो आत्मा जिसकी लिंग के रूप में पूजा होती है या सतो प्रधान होगी, अति की तमो प्रधान बनती है, जिन 7 दिनों में वो बड़े बड़े वैज्ञानिक दुनिया के जिन्होंने इतनी बुद्धि प्रखर की है, एकाग्रता की, कि दुनिया को नष्ट करने के लिए सैकड़ों बम बना के रख दिए, सागर में तैर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, जमीन में गड्ढे खोद करके गाड़े गए, एक सेकंड में बटन दबाने की दरकार है और सेकंडों में खलास। ये है दीपावली की यादगार। दीपावली से पहले होता है 10 सिरों का हरण, दशहरा, दशहरा। दस सिरों का आत्मा हरण कर लेती है, अपना सिर भी काटती है कि नहीं काटती है? रावण के लिए क्या यादगार है? नहीं, 100-100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अपना देवान अपने आप काटती है या भगवान आके काटता है? अपने आप काटती है।
जब ऐसी निराकारी स्टेज बन जाती है तब वो आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो ही वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया को खलास करने के लिए एटमिक एनर्जी तैयार तो कर ली, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है उस एनर्जी को, उस सामग्री को प्रयोग में लाएं। हिम्मत आ रही है? है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जानते हैं अगर हमने इसका प्रयोग किया तो दूसरा देश मानेगा नहीं, वो भी प्रयोग करेगा, फिर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। पहले की यादगार है, हिरोशिमा नागासाकी का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था? जो हीरो की क्षमा थी बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों में, वो जल गई थी। लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे पैदा होने लगे इस रूप में, रुद्रमाला के मणकों के रूप में। कोई मुखहीन विपुल मुख का हो क्या? कोई बैरे पैदा हुए, कितना भी ज्ञान सुनाते रहो कान में कुछ भी असर नहीं, कान है ही नहीं जैसे। कितना भी भगवान का इन आंखों से साक्षात किया हो, साक्षात्कार सिंध हैदराबाद में किया था कि नहीं? साक्षात्कार कितना भी किया हो इन आंखों से, लेकिन जैसे आंख है ही नहीं। अंधे के अंधे, फिर उनमें कोई काने हैं, कोई कुंजे हैं, कोई मुखहीन। ज्ञान लेते तो बहुत हैं, ज्ञान समझते भी बहुत हैं अंदर से, लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते, तो क्या हुए? मुखहीन। विपुल मुख काहु, कोई को ढेर मुख हैं, एक तरह की बात नहीं करेंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया छह मुख वाला टिक टिक बहुत करता है, नाम क्या रख दिया? कार्तिक। कभी इस्लाम धर्म की सुनाएगा, कभी क्रिश्चियन धर्म की सुनाएगा, कभी हिंदुओं की बात सुनाएगा, छह धर्मों की ढपली बजाता है, क्योंकि उसकी अम्मा छह धर्म वाली छह माताएं होती हैं जो पालना देती हैं, इसलिए वो संस्कार समाये हुए हैं। तो देखो कितने मुख हो गए, छह मुख हो गए। वो भी रुद्रमाला का मणका हुआ या नहीं हुआ? है? हाँ, बहुत प्रकार का ज्ञान सुनाई लेता है। जगदीश भाई क्या करते थे? है? मुरलियों का भी ज्ञान सुनाते थे क्या? विश्व का भविष्य देखो, लिखा हुआ ग्रंथ मोटा सा, उसमें सिर्फ मुरलियों की बातें बताई हैं या धर्मशास्त्रों की बातें भी बताई दी है? बड़े बड़े महात्माओं की बातें भी बता दी, और बड़े बड़े जो ज्योतिषी हुए हैं उनकी भी बातें बता दी। तो एक मुख से बोलता या अनेक मुख से बोलता, और मनमत की बातें भी लगाई दी। तो ये रुद्रमाला के मणके उसी बाप के बच्चे हैं। किस बाप के?
बापों का बाप जो सब धर्म वालों को राजाई देता है, विधर्मी धर्म पिताओं को भी, विदेशी धर्म पिताओं को भी राजाई कौन देता है? वेद का आत्माओं का बाप देता है या मनुष्य सृष्टि का बाप देता है? है मनुष्य सृष्टि का बाप देता है, प्रैक्टिकल में जाकर देता है। तो ये हुई विनाश की मूर्ति, और सहयोगी कौन हुए? वैष्णवी शक्ति तैयार नहीं होती, वो तो आती है बिल्कुल अंत में, जब पालना का काम शुरू होना होता है। कौन सहयोगी हुए? अरे इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों है? क्योंकि इस यज्ञ में रौद्र रूप धारण करने वालों ने अपने को स्वाहा कर दिया, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से स्वाहा कर दिया, पूरी बाजी लगाई। सबसे बड़े आतंकवादी कौन हुए? है जो अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, सारे जीवन की आहुति। लोग डरते हैं, अरे शंकर जी का ज्ञान नहीं सुनना, वो जैसे खुद लंगोटिया है तुमको भी बभूतिया बनाए देगा। तो ये दूसरी मूर्ति है, नाम क्या है? शंकर त्रिनेत्री, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र। और तीसरी मूर्ति है, जब पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है, पतितों का विनाश हो जाता है, तब है, तब पावन दुनिया जो ब्राह्मणों की स्थापन हुई है, जिसकी प्रत्यक्षता ही नहीं हो पाती, क्योंकि दुनिया में बेस्ट वाइब्रेशन ज्यादा फैल रहे थे या श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुट्ठी भर ब्राह्मणों के वाइब्रेशन ज्यादा फैल रहे थे, बेस्ट वाइब्रेशन की दुनिया बनी हुई थी, जिससे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संगठन संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा था। वो महापतित भिखारियों की दुनिया का विनाश कराने में सक्षम बनता है, लेकिन बाबा ने तो कहा शंकर कुछ नहीं करता। शंकर अगर विनाश करे तो शंकर देवता के ऊपर दोष आ जाए, फिर देवता का आएगा, देवता दुख देता है क्या? फिर बाबा की वाणी झूठी? फिर हाँ, कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है, वो कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करते हुए चित्रों में नहीं दिखाते हैं, याद में बैठा हुआ है। तो योग की शक्ति से शक्तियां, जो शिव की शक्तियां कही जाती हैं, उनको प्रेरित करता है वाइब्रेशन के बल से। और महाकाली जैसी शक्तियां नंबर वार सारी सृष्टि का, तमो प्रधान दुनिया का विनाश कर देती। दुनिया में इस रावण राज्य की दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन भी है? जो अष्टदेव कहे जाते हैं वो तो उनका भी विनाश हो जाता है क्या? नहीं, माया उनको छोड़ देती है, है? तो बच गए ना, है? माया किसी को नहीं छोड़ती, सबको अनिश्चय बुद्धि मृत्यु दे देती है। बाप के ऊपर अनिश्चय आया माना बच्चा मर गया या जिंदा, मर गया। ऐसी स्टेज आने वाली है संचत्तर में। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी स्टेज आई थी या नहीं आई थी? एक युगल मन का निश्चय बुद्धि बनकर रहा, चाहे बुद्धियोग के आधार पर और चाहे साक्षात्कार के आधार पर, भावना के आधार पर, एक युगल मन का स्थाई रहा और बाकी सब है विनाश के ऊपर, स्थापना के ऊपर। निश्चय आया या अनिश्चय पैदा हो गया? अरे बाबा ने तो कहा क्षेत्र में विनाश हो जाएगा, विनाश विनाश तो कुछ हुआ ही नहीं, नई दुनिया की स्थापना हुई नहीं। तो इतना बड़े कार्य की घोषणा बाबा ने की मुरली में और वो बात झूठी साबित कर दी। दुर्बुद्धियों ने क्या कहेंगे, दुष्ट बुद्धि ने ये फैसला किया या श्रेष्ठ बुद्धि ने फैसला किया? समझ माने बुद्धि। तो बुद्धि ऐसी बन जाती है दुष्ट कर्म करने से। अभी शूटिंग ऐसी हो रही है, सीमत के बरखिलाफ हम कर्म करते हैं तो बुद्धि हमारी कैसी बन जाती है? है ज्ञान को न समझने योग्य, और ज्ञान का तथ्य नहीं समझते हैं तो बुद्धि उल्टा निर्णय लेगी या सीधा निर्णय लेगी? हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम शांति। कै बजे क्लास शुरू हुआ था? है दिल रह गई। हाँ हाँ, बाबा की वाणी से दिल संतुष्ट नहीं हुई है। अभी वार्तालाप करने की दिल है, है नहीं है? अरे है, है अब टाइम नहीं है, घर जाने के दिन आए। ओम शांति।